Hare Krishna. So it's my great fortune to be here at ISKCON Pune, Shri Shri Radha Vrindavan Chandra temple and the glorious devotees here, because all of you are already being so nicely trained by His Grace Radhesham Prabhuji and so many other Vaishnavas. So I don't feel myself qualified to say anything over here, but yes, I have come here for my personal reasons so that I can take blessings of Vaishnavas who have been receiving mercy of Shri Radha Vrindavan Chandra from such a long time in the association of such exalted devotees over here. So I am truly blessed to be here. Thank you very much for inviting me. Thank you very, very much. Hare Krishna.
Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivar Dhari. Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana. Yamuna Tiravan Chari, Jai Kunja Vihari. Yamuna Tiravan Chari, Jai Kunja Vihari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki, Samasta Kathit Vaishnava Bhaktavrinda ki jai, Nitai Nitai Gopramanande Hari Hari Bo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Oh, this is in Hindi. The class is in Hindi or English? Yeah, we can go for English, I think. Here we have in English.
Hindi.
Acha, kaun jata Hindi? Acha, kaun jata English? Acha, Marathi? Marathi mere ko aati nahi hai. Okay, so Hindi mein class nahi hai? Acha, theek hai. Jaise bhaktu ki ichha. Alright. तो हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 4 अध्याय है 29 और अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राधा प्रचनी बरी के मध्य वार्तालाप और श्लोक संख्या है 51। सवय प्रियतमश्चात्मा सवय प्रियतमश्चात्मा यतो ना भयमण्डपी यतो ना भयमण्डपी इति वेद सवय वेद्वान्। सह विद्वान् स गुरुर्हरि सवय प्रियतमश् सवय प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवय विद्वान्। यो विद्वान् स गुरुर्हरि सवय प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद स वै विद्वान्। यः विद्वान् स गुरु हरि Mataji's Vaishnavis. Okay, Shabdat and Wadat Atvari, Shri Prabhupada Ji ke dwara, Shri Prabhupada ki jai. Shabdat. Saham. वह वै निश्चय ही प्रियतमा अत्यंत प्रिय च भी आत्मा परमात्मा यता जिससे न कभी नहीं भयम डर अणु सूक्ष्म अपि भी इति इस प्रकार वेदा जो जानता है सह वह वै निश्चय ही विद्वान शिक्षित यह जो विद्वान शिक्षित सह वह गुरु गुरु हरि भगवान से अभिन्न। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए अनुवाद। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार में रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर कहते हैं साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र उक्त सथा भाव यतैव सद्भि। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। अतः भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्मपुराण में कहा गया है षटकर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव शुपचो गुरु। भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और ब्राह्मण के षटकर्मों को जानता हो किंतु वह जब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक वह भगवान का भक्त ना हो। किंतु यदि कोई चंडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भगवान की शुद्ध भक्त हो तो वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है उसको ये समझना चाहिए कि वह साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित है। जहां तक प्रयुक्त शब्दों गुरु हरि के अनुसार प्रमाणिक गुरु के परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता हो। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको यहाँ पर इस गृह सामूहिक लीला प्रभु का संग प्राप्त हो रहा है। तो सारा चीज़ें वैसे शायद अंग्रेजी में प्लान में था इसलिए इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में था बट हिंदी में देने का प्रयास कर। सामूहिक लीला प्रभु पिछले 20 सालों से कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं और कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अति प्रिय शिष्यों में से एक हैं। 2006 में उन्होंने महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और उसके कुछ समय के बाद उस समय वो जॉब करते थे SCL और UN कंपनी में। तो बाहर के कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर उसको त्याग कर पूरी तरह से ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किए और उसके थोड़े समय के बाद महाराज ने उनको जो एयरपोर्ट के पास द्वारका नामक जगह है वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट खोलकर वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया और वो सेवा वो बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। साथ साथ वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है जैसा कि आप में से कई वक्त गुरु पूजा के समय में मिलकर के उनको धन्यवाद दिए। तो उनके कुछ वीडियोस और कुछ जो क्लिपिंग्स होते हैं वो 10 लाख उससे भी ज़्यादा जो भक्त और नए लोग हैं वो देखते हैं और कृष्ण भावनामृत में प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो जो भक्ति के जो जटिल विषय हैं उनको एक अच्छे ढंग से ह्यूमरस वे से कैसे लोगों को कम्युनिकेट करना है वो आज आप देखेंगे थोड़ी देर में मेरा इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद। तो दिल्ली में एक वी सर्व करके एक डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से वो कॉन्ग्रीगेशन केयर एंड कॉन्ग्रीगेशन का जो एक्सपेंशन है उसको देखते हैं, तो उसमें भी वो डायरेक्टर के रूप में सेवा करते हैं, साथ साथ वो IIT पटना, IIM अहमदाबाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाते हैं और वहाँ पर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देते हैं, और उसके साथ वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं, खुद एक वंडरफुल एक्टर हैं और अच्छे सिंगर हैं, अच्छे प्रवचनकार हैं, तो सब देखेंगे तो। और स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी वो एक वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, और उसके अतिरिक्त उनकी विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे पहली बार में मिलता है तो उसको लगता नहीं है पहली बार मिल रहा है, उसको लगता है पहले कभी मिले हुए हैं, इतना तत्परता से, इतना जल्दी वो मित्रता और मैत्री जोड़ लेते हैं कि किसी को नहीं लगता कि शायद वो पहली बार मिल रहे हैं, उनको जानते नहीं है, ऐसा अनुभव जो भी उनसे मिले हैं उनको होता है। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी अपना द्वारका, दिल्ली जहाँ पर कि इतने सारे मंदिर, इतने सारे व्यस्तता है और मैराथन का समय है, उसमें से समय निकाल कर 4 दिन के लिए यहाँ पुणे में आए हैं और यहाँ पर आज भागवतम क्लास के लिए उपस्थित हैं। तो आइए आज हम उनका श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में स्वागत करते हैं, 3 बार हरि बोल बोलते हैं। समग्र लीला प्रभु की, श्री प्रभुपाद की।
प्रभु जी की जाए। हरे कृष्णा। आपने एक गाना सुना होगा, करते हो तुम गनैया मेरा नाम हो रहा है, राइट? तो वो मेरे को बहुत अप्लीकेबल है, मैं कुछ नहीं करता हूँ वैसे तो, मैं कुछ भी वीडियो वीडियो डाल देते हैं और भक्त लोग देख लेते हैं, तो उनकी महानता है कि मेरे को टमाटर नहीं मानते, तो ये भक्तों की महानता है, क्योंकि मेरे से तो मेरे वीडियो सहन नहीं होते, मैं तो बीच में बंद कर देता हूँ, पर डिवोटीज देख लेते हैं, बिकॉज यार तरोरपी सहिष्णुना, दे आर एज टॉलरेंट एज अ ट्री, बट यस वट एवर गुड इज हैपनिंग इज मर्सी ऑफ दी वैष्णवास। थैंक यू। जय हो, हरिभक्तों की जय। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और सबके मित्र हैं। तो भगवान क्या है, सबके मित्र हैं और सबको पालने वाले हैं, परमात्मा है, और क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को जानता है इसलिए वो एकदम निर्भय रहता है, और ऐसे व्यक्ति जो कि निर्भय है औरों को निर्भय होने की शिक्षा देता है, ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। प्रभुपाद जी हाँ बता रहे हैं। मैं एक समय भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज से बड़ी सुंदर कथा सुन रहा था, उसमें क्या महाराज बता रहे थे कि ना कि कुरुक्षेत्र में जब अभी युद्ध शुरू होने वाला है, तो अभी कौरव पार्टी और जो पांडव सेना दोनों तैयार हैं, दोनों पार्टियां तैयार हैं अभी लड़ने के लिए, तो ना कुरुक्षेत्र के बीच में जो है एक चिड़िया का घोंसला था, और चिड़िया जो है वहां उसके अंडे भी थे, और उसने कहा कि कहाँ दोनों लोग कहाँ इकट्ठे हो गए यहाँ पर, अब पता नहीं मेरे अंडों का क्या करेंगे ये लोग। तो अब देख रही दोनों तरफ की, दोनों तरफ लगे, तो एक तरफ से जो है शंख बजे, शंख बजे तो ना काफी लाउड शंख था, कौरव पार्टी का शंख बजा, कहते शंख बजा रहे, शंख से ही मतलब इसकी आवाज से मेरे अंडे ना फूट जाए, तो इनका शंख बंद हुआ। फिर उसके बाद पांडवों ने शंख बजाया, वो तो इतना ज्यादा इंटेंस था कि अंडे हिल ही गए, तो उसने अंडों को रोक ही लगी कि ये टूट ही ना जाए, इतने जोर से शंख बजा रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद लगा ये अच्छा है, शंख शांत हुए, तो लग रहा था कि ना ये कुछ ना कुछ मेरे अंडे लगता है गए आज काम से। तभी जो है ना यहां से इस पार्टी से जो है एक रथ आके ना सामने आके रुक गया, और दोनों जो आपस में गप मारने लगे, कहते ये दोनों कौन गप मार रहे हैं आपस में ये लोग, कहते देखो आप लोग जो कोई भी हो ना ये मेरे अंडे जो है ना इनको बख्श दो आप। लेकिन दोनों 45 मिनट गप मारे आपस में, वो आप जानते हो गप क्या है, बेसिकली श्रीमद भगवदगीता, लेकिन उसके लिए तो गप ही है, कहते कौन लोग आपस में लगे हुए हैं, एक बहुत उदास है और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं तू कर लेगा तू कर लेगा, ऐसा कोई लगे हुए हैं दोनों आपस में। और फिर ये बोलती रही देखो कुछ हो जाए, देखो आप लोग जो गप मार रहे हो मार लो, लेकिन ना मेरे अंडों को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे अंडों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फाइनली जो है ये रथ फिर वापस चला गया, धर ले, सुना ही नहीं उन्होंने, तो कम से कम मेरा यहाँ से घोंसला उठाते फिर ये अंडों के साथ ले जाते, कहते सुना ही नहीं चले गए वो, आप अंडे तो गए। अब ये जो चिड़िया है जाकर पास है पेड़ के पास जाके बैठ गई, कुरुक्षेत्र बाहर जो है एक पेड़ था वहां जाके बैठ गया, अब अंडे तो गए। अब जो है युद्ध शुरू हो गया, दोनों तरफ से आने शुरू हो गए, अब ये देख रही थी बस अब तो अंडे गए, अब तो अंडे गए, अब तो ये दोनों तरफ पार्टियां भिड़ जाएंगी, अब मेरे अंडे बीच में गए। तो अर्जुन जो है, अब भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं, उन्होंने कहा अर्जुन, कहते हैं हाँ बताइए, कहते हैं जो तू देख रहा हाथी, कहते हैं हाँ, हाथी गले में घंटा है ना उस पर तीर मार। क्या प्रभु हाथी को नहीं मारना, हाथी के ऊपर जो बैठा है उसको नहीं मारना, घंटे को मारना है? फिर उनको याद है नहीं नहीं मैंने गीता के समय बोल दिया था कृष्य वचनम तवा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, तो अभी कर देते हैं फिर ठीक है। तो फिर उन्होंने धनुष पे बाण चलाया और तीर मारा, और जो घंटा था वो घंटा नीचे गिरा. जो नीचे गिरा तो जो घोंसला था बिल्कुल उसके आसपास उसकी बाउंड्री पे आके गिरा थक, और भारी भरकम था तो धस गया पूरा अच्छे से. अब 18 दिन जो है युद्ध चला महाभारत का, खूब क्षत्रियों का गरम गरम लहू था वो बहता रहा, आसपास गरम गरम लहू था तो अंदर थोड़ा सा वार्मथ क्रिएट हो गई उससे. तो 18वां दिन जब हुआ तो अश्वत्थामा जब भाग रहा था तो उसका जो पहिया था वो उस घंटे से टकराया, तो घंटा थोड़ा खुल गया. तो घंटा खुल गया तो उसने आवाज आई ची 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 ची. तो चिड़िया ने कहा ये ची 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 की आवाज कैसे आ रही है कुरुक्षेत्र से. वो देखा वो तो उसी के घोंसले में से जो है वो बच्चे लोग निकल रहे हैं. कहते वो देखो घंटा ऐसे खुला हुआ है. कहते अरे मेरे बच्चे बच गए, मेरे बच्चे बच गए. तो अगर कोई पक्षी भी हो, अगर वो भी भगवान के पास जाता है कि भाई देखो मेरे बच्चों को कुछ ना होना चाहिए, मेरे अंडे बच जाए. भगवान पक्षी पशु पक्षी की भी रक्षा करते हैं, फिर इंसानों की तो बात ही क्या और भक्तों की तो फिर बात ही क्या. तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है जो कि ये जानता है कि भगवान पालने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति निर्भय होकर ये जीवन जी पाता है. या श्रीधर स्वामी का हमने सामने नाम सुना हुआ है. तो श्रीधर स्वामी वैसे जो गृहस्थ थे, उनकी वाइफ थी, उनके उनका वो गर्भवती थी, अभी बच्चा होने वाला है. तो उन्होंने सोचा हुआ था अभी वाइफ मेरी गर्भवती है, अब मैं कहां मैं भक्ति कर पाऊंगा, अपना जीवन कहां दे पाऊंगा मैं. अरे तो तभी जो है वाइफ ने वहां बच्चा भी दे दिया. बच्चा दिया वाइफ की तो को शरीर छोड़ना पड़ा, और बच्चा जो है वहां रो रहा है. कहता अल्लो जी वाइफ तो गई, अब बच्चा मीने संभालने वाला कोई नहीं है, बच्चे को मेरे को संभालना पड़ेगा. अब जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा मैं अपना जीवन नहीं समर्पित कर पाऊंगा, अब तो बहुत मुश्किल असंभव है मेरे लिए. अब वह सोच के ना वो वहां बैठ ही गए थे, तभी ना वहां पर एक छिपकली का बच्चा गिरा, अभी नवजात बच्चा, उसके भी आंखें बंद हैं अभी उस बच्चे की. तो तभी जो है उसके आसपास एक एक मक्खी घूमती हुई आई, इस बच्चे की आंखें अभी बंद हैं, खा लिया उसने. तो श्रीधर स्वामी ने कहा कि जब भगवान ने एक छिपकली के बच्चे के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, क्या मेरे बच्चे के लिए बंदोबस्त नहीं करेंगे? जरूर करेंगे. और ऐसा सोचकर श्रीधर स्वामी वहां से चले गए. वाइफ की डेड बॉडी यहीं पड़ी हुई है अभी, बच्चा रो रहा है अभी, एंड ही लेफ्ट. 25 साल बाद जो वापस इस गांव में आए तो उनको पता लगा यहां पर एक बहुत ही यंग गुरु है, 25 साल उसकी उम्र है, और पूरे गांव का गुरु है. सबके सब जो उनसे परामर्श लेते हैं, शिक्षा दीक्षा उन्हीं से लेते हैं. तो श्रीधर स्वामी ने पूछा अच्छा ये 25 साल का इतना नौजवान हर हर मौला है, ऐसे गुरु कैसे, क्या कहां से आए? कहते अरे जी कहां से आए, इसी गांव का है. 25 साल पहले क्या हुआ था, इनकी माता श्री ने जन्म दिया था, तो जन्म दे करके उसकी मृत्यु हो गई. उसके बाद लेकिन इनके जो पति देव थे वो तो चल दिए. अच्छा कहाँ चले? कहते पता नहीं वो तीर्थाटन में चले गए वो. तो फिर पीछे से उन्होंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको गुरुकुल में डाला, फिर बच्चा इतना मेधावी निकला कि आज पूरे गांव का गुरु है वो. तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि भगवान सबको पालने वाले हैं. चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधी लेता है. लेकिन जिसको ये विश्वास ना हो, पता नहीं प्रभु पालेंगे नहीं पालेंगे, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे कौन खिलाएगा, क्या होगा मेरा, तो जो ऐसा सोचता रहता है वास्तव में ऐसा व्यक्ति भक्ति ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो सेल्फ प्रेजर्वेशन में इतना खो जाता है कि उसको ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान पालने वाले. लेकिन इस्कॉन जो गुरुकुल है मायापुर का, वहां पर कभी कभी ये लोग एक्सरसाइज करते हैं कि बिना पैसा लिए हुए बस एक पोटली में एक धोती कुर्ता लेकर के चल देते हैं. लेकिन कहां रहेंगे कुछ नहीं पता, कहां पाएंगे प्रसाद कुछ नहीं पता, चलते रहेंगे देखते हैं ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे. तो चलते रहते किसी मॉल में रुक गए, रास्ते में कोई मॉल आया, मॉल के बेसमेंट में गए, वहां रुक गए, वहां चादर उदर बिछाई, वहां लेट गए. अच्छा अभी खाने का क्या होगा? तो तभी जो वहां पर कोई आया, आप लोग इस्कॉन से? हाँ जी हम लोग इस्कॉन मायापुर से. कहते देखिए हमारे हाथ जोड़ के विनती है, प्रसाद आपको हमारे यहाँ पाना है. कहते हैं ओके वेरी गुड, हम तो यही इंतजार कर रहे थे. चलिए जी बहुत अच्छी बात है, प्रसाद हो गया. इस तरह से चलते चलते ये लोग ना एक गांव पहुंचे. गांव पहुंचे दूर दूर तक कोई नहीं था, एकादशी का दिन था. कहते लो जी आज तो कुछ नहीं मिलना, आज तो निर्जला व्रत ही है आज तो. तो ऐसा वो सोच ही रहे थे तभी जो एक व्यक्ति ट्रैक्टर में आया. आप लोग तो हरे कृष्णा वाले लग रहे हो आप लोग तो. हाँ जी बताइए. कहते यहाँ पर भी एक हरे कृष्णा वाले रहते हैं, वैसे बड़े हैं वरिष्ठ हैं, उनका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उनके घर में भगवान के विग्रह भी हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं. चलो जी वहां पर गए तो एक ऐसा कमरा था, इतना बड़ा कमरा होगा, उसमें इतने बड़े जगन्नाथ जी, इतनी बड़ी सुभद्रा जी, इतने बड़े बलदेव जी, वो देख के हैरान रह गए, इतने बड़े जगन्नाथ जी। वो घर था श्री प्रभुपाद जी के शिष्य का, आत्म तत्व प्रभु का, और उस दिन उनकी वाइफ ने भक्तों को 15 आइटम एकादशी प्रसाद खिलाया। मानने वाला कौन? कृष्णा। हिस्ट्री विटनेस है, कभी भी भगवान का भक्त भूखा नहीं सोया। उसने व्रत रखा हो, खुद भूखा रहे तो बात और है, लेकिन वैसे ही कभी सोचता रहे अरे प्रसाद मिल जाता, प्रसाद मिल जाता ना। पालने वाले तो ठाकुर जी हैं। ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, नित्यानंद चतुर्दशी का दिन था और मैंने प्रसाद बांटा और मैंने कहा बाद में जो बचेगा थोड़ा बहुत पालेंगे। तो बाद में मैंने सारी बाल्टियां देखी, सब में कुछ भी नहीं था, मतलब उसमें खरोच खरोच के भी सबने निकाल लिया था उसमें से। जय राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर था की जय, जगन्नाथ बलदेव सुधरमैया प्रभु सुदर्शन की जय। मैं कह रहे यहाँ प्रसाद ही नहीं है, ओहो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल जाती अच्छा रहता। मैं कहा नहीं चलो ठीक है, वैष्णो की सेवा तो हो गई, भक्तों ने पा लिया, हमने पा लिया और क्या, बस खुश रहना चाहिए इसमें। नहीं फिर भी लगता था, लेकिन फिर भी काश ऐसा होता कि प्रसाद मिल जाता तो बढ़िया रहता। नहीं नहीं यार देख सेवा तो कर दी ना वैष्णो की और क्या, क्या प्रसाद प्रसाद ला के रखा यार, जो हो गया हो गया, भक्तों की सेवा हो गई, लेकिन भूख लगी हुई थी बहुत, लेकिन यार प्रसाद मिल भी जाता तो अच्छा ही रहता वैसे। हालांकि उसी वक्त जो है वहां पर एक भक्त आया पूरी फुल ऑन प्लेट लेकर, कहता प्रभु ये एक्स्ट्रा प्लेट है, अगर कोई भक्त मिले तो उसको दे देना। मैंने कहा हाँ एक भक्त है। तो पालने वाला कौन है? ठाकुर जी हैं। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि वास्तव में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि परम आत्मा है और सबके मित्र हैं, सबसे बड़े हितैषी तो यही है, जो इस बात को जानता है वो निर्भय होकर के जीवन जीता है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो इस बात का प्रचार करता है ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। और साथ ही बताया जा रहा है कि ऐसे गुरु जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं उनको कृष्ण से अभिन्न मानना चाहिए। और यहां प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र है, कि साक्षात हरि के समान है गुरुदेव। इसका मतलब क्या है साक्षात हरि के समान? तो क्या मतलब ये, क्या मतलब ये कृष्ण ही है क्या, ये साक्षात हरि ऐसा ही है, ये साक्षात हरि ऐसा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो वेणु बजाते हैं लेकिन ये तो वेणु नहीं बजाते। भगवान श्री कृष्ण गोपियां हैं, क्या गुरुदेव की गोपियां हैं? नहीं ऐसा नहीं है। सो दैट वे साक्षात हरि का वैसे मास्टर मतलब क्या है, कि साक्षात हरि के समान ये पूजनीय है, वंदनीय है, ये इसका वास्तव मतलब है। श्री प्रभुपाद जी के समय में आपने नाम सुना होगा विष्णुजन महाराज का नाम सुना होगा। विष्णुजन महाराज और एक दो भक्तों ने मिलकर के ना ये बात शुरू कर दी थी कि ना श्री प्रभुपाद हो सकता है स्वयं कृष्ण ही हो, क्योंकि जैसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं कर सकती, तो प्रभुपाद जी ना ये भगवान ही है, ये कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी को इस्कॉन से निकाला नहीं, लेकिन एक समय निकाला, इनको निकाल देगा, इनको निकाल दो। जय सूर्य राधेश्याम प्रभु जी की जय, हरे कृष्ण प्रभु जी, दौड़ प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है ब्लेसिंग्स, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी ने कभी किसी को इस्कॉन से नहीं निकाला, चाहे किसी ने कितनी बदमाशी की हो लेकिन उसको इस्कॉन से नहीं निकाला, लेकिन एक समय में प्रभुपाद जी ने इनको इस्कॉन से निकाल दिया, इनको निकाल दो, ये विष्णुजन स्वामी और जितने बाकी भक्त इनको निकाल दो, जो लोग बोल रहे हैं ना मैं भगवान हूं नारायण कृष्ण, निकाल दो इनको। हालांकि 3 महीने बाद फिर वापस आया, कहता है सॉरी श्री प्रभुपाद गलती हो गई हमसे, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं वास्तव में। तो जैसे किसी को बोलना शेर आदमी है यार, ये तो शेर आदमी है, शेर आदमी का मतलब ये नहीं कि उसके क्लॉज हैं, उसकी मूछें हैं और आह करके बात करता है, ऐसा नहीं है। शेर आदमी का मतलब है कि शेर की तरह बहादुर है ये, पर ऐसे नहीं कि उसने अपना मनुष्य जीवन छोड़ दिया वो शेर हो गया वो, तो हम बोलते हैं अगर शेर आदमी है यार एकदम शेर आदमी है तो उसका मतलब शेर के समान बहादुर है। इस तरह से साक्षात हरित्वेन का मतलब है कि साक्षात हरि के समान पूजनीय है, वंदनीय है, पवित्र है, ये है गुरुदेव। तो ये बात जो है लेके चलनी चाहिए। तो गुरु मींस ही इज हैवी, गुरु मींस हैवी, हैवी डज नॉट मीन कि वो वेट में बहुत भारी है, हमारे गुरुदेव 150 किलो है, सो ही इज वेरी हैवी। सो गुरु इज हैवी बट ही इज हैवी इन व्हाट, ही इज हैवी भारी है वो, लेकिन भारी है अपने चरित्र में बहुत भारी है, अपने चरित्र में बहुत भारी है, और साथ ही अपने इंस्ट्रक्शंस में बहुत भारी है, जो आदेश देते हैं उपदेश देते हैं उसमें बहुत भारी है, और साथ ही सबसे ज्यादा भारी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेके घूमने वाले हैं, इसीलिए गुरुदेव बहुत भारी भी हैं। भले वो दुबले पतले नजर आते हो लेकिन हृदय में कृष्ण को लेके चलते हैं वो, और कृष्ण दे भी सकते हैं किसी को, बहुत शक्ति है उनके अंदर। तो इस प्रकार से गुरु इज हैवी, इसका मतलब ये है वास्तव में उनका चरित्र बहुत हैवी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेश उपदेश बहुत हैवी है और साथ ही कृष्ण को लेकर चलते हैं अपने साथ, साक्षात हरित्वेन। तो गुरु है वास्तव में है भगवान के प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि का होने का मतलब है ये वास्तव में कृष्ण की कृपा की शक्ति है। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति संदर्भ के अंदर कि गुरु की भला क्यों आवश्यकता पड़ती है। साधारण जीवात्मा जब बद्ध जीवात्मा उसका जीवन तो दुख से भरा हुआ है, अच्छा कृष्ण उनका जीवन में आनंद ही आनंद है, कृष्ण को दुख का अनुभव ही नहीं है, देयर इज नो सफरिंग इन कृष्ण, आनंद रसो वैसा कृष्ण तो वो है। तो कृष्ण जो है ये जानते नहीं कि इनके दुख क्या होता है, कितने लोग ये तो दुखी है लेकिन दुख क्या होता है कृष्ण को पता नहीं, बिकॉज कृष्ण में तो सिर्फ आनंद ही आनंद है सिर्फ, लेकिन साधारण बद्ध जीवात्मा के अंदर तो दुख ही दुख है। तो इसीलिए एक ऐसी एंटिटी बीच में चाहिए होती है जो कि हमको कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सके, एंड दैट इज गुरु। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का आनंद और गुरुदेव की दया जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है करुणा। सो कंपैशन प्लस ब्लिस इज इक्वल टू मर्सी, कंपैशन प्लस ब्लिस इज इक्वल टू मर्सी। ये भगवान जानते हैं ये है गाय जर्सी, इसको चाहिए मर्सी, तो मर्सी कैसे आएगी, ऐसी आएगी गुरुदेव की दया होगी और साथ ही कृष्ण का जो आनंद है वो होगा। इसलिए जब भी हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो आनंद का अनुभव भी करते हैं और करुणा का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलते हैं गुरु। और श्री विष्णुराज की ठाकुर बता रहे हैं माधुरी कादंबिनी के अंदर कि कृष्ण की कृपा तो गुरु कैरी करते ही करते हैं, साथ में अपनी भी एक कृपा कैरी करते हैं, और कृष्ण की कृपा जो है गुरु की कृपा के पीछे पीछे चलती है। जैसे कृष्ण की बाल लीलाओं में जहां जहां दाऊ जी जाते थे बलराम जी पीछे, कृष्ण जो है पीछे पीछे जाया करते थे, जहां जहां गुरु है वहां वहां कृष्ण है। तो जहां जहां पर कृष्ण की कृपा जाती है वहां, जहां जहां गुरु की कृपा जाती है वहां वहां कृष्ण की कृपा जाती है। और कभी ऐसा हो किसी ने बदमाशी कर दी, किसी से अपराध हो गए, दिक्कतें हो गई, जिस वजह से अब कृष्ण की कृपा ब्लॉक हो गई, कहते बहुत अपराध करता है तो ब्लॉक, लेकिन अगर गुरु की कृपा है कि कृष्ण माफ कर दो टेढ़ा है पर मेरा है इस पर कृपा कर दो आप, तो गुरु जो अपने लेटर हेड में जब दे देते हैं किसी का ऐसे साइन करे कि भाई ये है तो है बदमाश है लेकिन इसमें अच्छा होने की उम्मीद भी है, तो जो गुरु का ऐसा रिकमेंडेशन है तो व्यक्ति बच जाता है। एक समय एक भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद अगर कोई भक्त दीक्षा लेने के बाद नियम तोड़े, चार नियम तोड़े, तो क्या गुरु उसको माफ कर देते हैं? प्रभुपाद ने कहा वो अगर एक बार गलती करेगा तो गुरु उसको माफ कर देते हैं। अच्छा श्री प्रभुपाद अगर भक्त दीक्षा लेने के बाद दूसरी बार नियम तोड़े तो? प्रभुपाद ने कहा गुरु माफ कर देते हैं। अच्छा श्री प्रभुपाद अगर वो तीसरी बार नियम तोड़े तो? प्रभुपाद ने कहा सच्चा रास्कल, उसने दीक्षा ली फिर भी वो नियम तोड़ता है, तो प्रभुपाद जी फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे ना? प्रभुपाद ने कहा नहीं फिर तो माफ कर दूंगा, हालांकि माफ कर दूंगा उसको। अच्छा श्री प्रभुपाद अगर चौथी बार करे तो? प्रभुपाद ने कहा ओह ही सडनली अ रास्कल, बदमाश है वो। अच्छा श्री प्रभुपाद फिर आप माफ नहीं करोगे उसको? फिर प्रभुपाद ने कहा गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। गुरु जो है वैसे अनंत रूप से बहुत ही दयामय है, कृपालु हैं, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, कोई बात नहीं नियम तोड़ लेते, कहीं गुरु महाराज माफ कर दो माफ कर दो, ये नौटंकी हो सकता है। गुरु तो माफ कर दे लेकिन ये एक और व्यक्ति भी है जो माफ नहीं करने वाला। कहता अच्छा मेरे प्रतिनिधि के साथ तू खेल खेल रहा है ऐसे, अब देख सबसे बड़ा चीटर कौन है भगवद गीता के अनुसार? कृष्णा। तो जो उनके प्रतिनिधि को चीट करता है कृष्ण उसको कितना अनुपात में चीट करेंगे सोच भी नहीं सकते हम। सो वन शुड नेवर एवर चीट वन्स स्पिरिचुअल मास्टर। सो गुरु जो है वास्तव में कृपा शक्ति है, ठाकुर जी की कृपा शक्ति को लेकर के चलते हैं ये, और साथ ही अलादनी शक्ति राधा रानी की, बलराम जी की चित शक्ति और अलादनी शक्ति जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति को अपने हृदय में लेकर के गुरु चलते हैं। तो जब किसी भक्ति दीक्षा होती है, शिक्षा होती है, गुरुदेव उसको उस पर कृपा करते हैं तो उसके जीवन में दोनों चीजें आती हैं, अलादिनी शक्ति भी और चित्त शक्ति भी, दोनों के दोनों जब कंबाइंड रूप में स्वरूप शक्ति के रूप में गुरुदेव के हृदय में है वो भक्त को प्राप्त होते हैं। इससे हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमारे दिव्य ज्ञान के प्रति हमारा रुझान बढ़ जाता है, क्यों? चित्त शक्ति का प्रभाव है, और साथ ही दिव्य आनंद का अनुभव भी होता है अलादिनी शक्ति। लेकिन दोनों शक्तियां जो है कंबाइंड रूप में गुरुदेव के माध्यम से भक्त को प्राप्त होती हैं। सो गुरु इज द कैरियर ऑफ चित्त शक्ति एज वेल आराधनी शक्ति कंबाइंड टुगेदर एज स्वरूप शक्ति, और ये जो है साधारण जीवात्मा जो है जो बद्ध जीवात्मा है उसका कल्याण करने हेतु गुरु देते हैं इस प्रकार से कृपा। तो इसीलिए गुरु का होना लाइफ में बहुत अधिक जरूरी है। क्योंकि कृष्ण की कृपा भी यही कैरी कर रहे हैं, साथ में उनकी खुद की कृपा भी है, ये दोनों कैरी करते हैं गुरुदेव, और इस तरह से बद्ध जीवात्मा का कल्याण करते हैं। तो ऐसा लेकिन ये क्यों आता है, इस तरह के श्लोक भी आते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ऐसा भी आता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात महेश भी है साक्षात परब्रह्म है, ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है ताकि हम गुरु के प्रति जजमेंटल ना हो, क्योंकि जिस दिन हम गुरु के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं उस दिन हम गुरु से कृपा लेना बंद कर देते हैं। अब वो किसी से भी अगर आप श्रवण करते हो ना, अगर आप उसके प्रति जजमेंटल हो जाओ उस वैष्णव के प्रति, तो अब आप उस वैष्णव से कृपा लेना बंद कर दोगे, राइट? तो इसीलिए जब साक्षात हरि तुमने बताते कहते अरे साक्षात हरि के समान है, किसको जज कर रहा है तू भटूरे, मत कर ऐसा, मर जाएगा तो खत्म हो जाएगा तेरी भक्ति, जो भी है ना बची कुछ एक दो ग्राम वो भी निकल जाएगी, मत कर ऐसा, साक्षात हरि के समान है वो। सो दैट वी डू नॉट बिकम जजमेंटल टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल मास्टर, अगर वो किया तो गए गए काम से। तो किस प्रकार से गुरु को साक्षात हरि के समान मानना चाहिए, उनको वैसे पवित्र मानना चाहिए, उसे कई सारे बड़े सुंदर उदाहरण है श्री प्रभुपाद जी की लीलाओं में से। जैसे श्री प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, अभी मंदिर बना नहीं था, तो प्रभुपाद जी जब अपना स्टूल पास करते थे तो प्रभुपाद जी बाल्टी में करते थे, बाल्टी में स्टूल पास करेंगे और फिर भक्त जो है स्टूल को लेकर जाएगा फेंकने के लिए लेकर जाएगा। तो अब जिस गड्ढे के अंदर शिष्य जो है प्रभुपाद जी का स्टूल फेंकने के लिए जाया करते थे, वहां पर भक्त लोग लेटे होते थे कि प्रभुपाद जी का स्टूल हम पे गिरेगा तो हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का स्टूल है, ये स्टूल नहीं है, ये गुरुदेव जैसे पवित्र है ना उस तरह से उनका स्टूल भी पवित्र है, हमको हम पवित्र होंगे। ये दृष्टि है भक्तों की कि गुरुदेव का जी सब कुछ पवित्र है, सब कुछ पवित्र है उनका। ऐसे प्रभुपाद जी एक समय लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी मायावादियों की बात कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने कहा दीज मायावादीज दे वॉन्ट टू किल माई कृष्णा, These Mayavadis, they want to kill my Krishna. Basically, Prabhupada जी बताते हैं मायावादी हैं, भगवान को निराकार बताते हैं, इसलिए भगवान के रूप के प्रति हिंसा करते हैं ये लोग और निराकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे These Mayavadis, they want to kill my Krishna. अभी जो नए नए हिप्पीज हैं इनको पता नहीं ये मायावादी है कौन, तो इनको लगा ये ना मायावादी नाम का कोई व्यक्ति है जो जो ना प्रभुपाद जी के कृष्ण को मानना चाहता है वो। तो ये ना लेक्चर के बाद ये प्रभुपाद जी के पास आ गए, कहते हैं श्री प्रभुपाद आपने मायावादी का हमको एड्रेस दे दो, हमारा ना यहाँ कनेक्शन है, वी हैव गॉट सम मॉड स्ट्रीट बॉयज, ये लोग ना इनको थोड़ा सा पैसा दो किसी को भी टपका देते हैं ये लोग, तो इसीलिए मायावादी नाम को जो भी है ना इसको हम खलास कर देंगे, आपको कृष्ण कुछ नहीं होगा, दिस मायावादी विल नॉट किल योर कृष्ण। तो प्रभुपाद जी उस पर इतना हंसे, हंसते रहे प्रभुपाद जी, उन्होंने बोला स्वामी जी व्हाट हैपेंड, यू कैन गिव दी एड्रेस, आप हमें एड्रेस दो, हम मायावादी नाम क्या कर देंगे उसका। प्रभुपाद जी ने कहा यू गॉट द पॉइंट कि वास्तव में जब गुरु के प्रति ऐसी सेवा की भावना आ जाए कि जो चीज ना मेरे गुरुदेव को कष्ट दे रही है मुझे ना उस चीज को दूर करना है, तो वहां पर मायावाद सिद्धांत से भी ज्यादा ऊंचा सिद्धांत ये लोग इनडायरेक्टली जाने अनजाने में समझ गए थे कि ना ये मायावादी ये प्रभुपाद जो कष्ट दे रहा है तो ये हमारे गुरुदेव को कष्ट दे रहा है तो ये इसको किनारे करना है हमको, तो ऐसी भावना थी। ऐसे ही श्री प्रभुपाद जी का शिष्य था, वो प्रभुपाद जी का जो है हेडशिप कर रहा था और हेडशिप करके जो भी बाल थे उनको लेकर के अपने धोती में बांध रहा था वो। प्रभुपाद जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला गुरुदेव आई विल वर्शिप देम, ये आपका उच्छिष्ट है। बाल जो होते हैं वो तो मूछी माने जाते हैं, कहते हैं नहीं ये मूछी नहीं है ये शुची, क्योंकि मेरे गुरुदेव के बाल हैं ये, पूजनीय है ये। सो ये जो है दृष्टि होती है भगवान के भक्त की अपने गुरु के प्रति, उनका सब कुछ पवित्र है। प्रभुपाद जी एक समय एयरपोर्ट में थे, एयरपोर्ट में प्रभुपाद जी को पेट खाली करने के लिए जाना पड़ा। आप पेट खाली किया तो वहां बाथरूम तो होता नहीं स्नान करने के लिए, तो वहां वॉश बेसिन में जो है गिलास लेकर के वहीं पर प्रभुपाद जी ने स्नान कर लिया। स्नान कर लिया तो वो सारा पानी 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 हो गया। अब वो जो क्लीनर था उसको किसी ने फोन कर दिया भाई वहां तो सारा पानी पानी हो गया, तो आया और वो देख रहा है क्या पानी पानी कर दिया है, और प्रभुपाद जी ने गमछा बांधा चले गए प्रभुपाद जी। तो वो भी सोच ही रहा था इस तरह से ये क्या पानी पानी कर दिया है, तो शिष्य वहां पर आया प्रभुपाद जी का, कहता है अबे चरणामृत है ये, और उसने पानी लेके छिड़क दिया। सो दैट वेज गुरु को जो है साक्षात हरि के समान समझना चाहिए वास्तव में। गुरु जानते हैं बद्ध जीवात्मा को कैसे उद्धार करना है, उस पर कैसे कृपा करनी है, गुरुदेव जानते हैं। तो प्रभुपाद जी शिष्य थे, दे वर मैड आफ्टर श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को इतना बेइंतहा प्रेम करते थे। ओ एक समय ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी पूड़ियां बना रहे थे, प्रभुपाद जी का शिष्य पूड़ी बना रहा था, पूड़ी ना एकदम फ्लैट पूड़ी रखी। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, पूड़ी एकदम फ्लैट थी, एज फ्लैट एज द भगवत गीता ऑफ द मायावादीज फ्लैट। प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, श्री प्रभुपाद यू नो बैड आटा। प्रभुपाद ने कहा अच्छा बैड आटा, ओके। प्रभुपाद जी वहां से उठे, वॉश बेसिन में हाथ धोया प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी गए किचन में, किचन में वहां प्रभुपाद ने पूड़ी बेली, पूड़ी बेल करके ना ऊपर से उसको तेल में डाला, तेल में डाला तो ना वैसी चपटी होकर के वैसी बाहर आई। तो शिष्य था वो हंसने लगा कि मेरे से तो नहीं भूली, आपसे कौन सी भूल गई, उसको बड़ी हंसी आ रही है। प्रभुपाद जी उसको देख रहे, तेरे को बहुत हंसी छूट रही है तेरे को। तो प्रभुपाद जी ने फिर दूसरी पूड़ी बेली, और दूसरी पूड़ी बेल करके ना बजाय कि ऊपर से डालने के, कढ़ाई के साइड से स्लाइड करके डाला, तो पूड़ी जो है एकदम नीचे के लेवल पे गई और फिर फूल करके ना ऊपर आई एकदम। और प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे छाना और उसके मुंह पे मारा उसने। अब ये भक्त था ना, इसको थोड़ा कुंफू वगैरह आते थे इसको, तो ये ऐसे हो गया, तो पूड़ी यहां से निकल गई इसके। प्रभुपाद जी ने कहा आई नो हाउ टू मेक नाइस पूरीज एंड नाइस डिवोटीज, आई नो दैट। और प्रभुपाद जाते वाले बोले एंड डू नॉट फॉरगेट यू आर ऑल्सो बैड आटा। सो बैड आटा में से भी अच्छी पूड़ी कैसे बनानी है, और बदमाश लोगों में से अच्छे भक्त कैसे बनाने हैं, ये प्रभुपाद जी जानते हैं। तो इसलिए गुरु जो है ही कैन गिव हिज मर्सी लाइक दिस ओनली। और इसलिए जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, क्योंकि उनका इतना बेइंतहा प्यार था श्री प्रभुपाद जी से, इसलिए हम देखते हैं दैट देयर आर स्पिरिचुअली सो एडवांस्ड। इवन टुडे आज भी ऐसे भक्त हैं जो कि अपने गुरुदेव से बहुत अटैच्ड हैं। जब मैं गुरु कहूं तो इसमें दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जब अपने गुरुजनों से बहुत अटैच्ड है, उनके प्रति बहुत रिगार्ड है, उसके अंदर बहुत कृतज्ञता की भावना है, ऐसा भक्त जो है बहुत तेज आगे बढ़ता है। बिकॉज गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। जैसे हमारी बैकबोन अगर सीधी रहती है तो हम, क्योंकि बैकबोन स्ट्रांग होती तो हम सीधे बैठ पाते हैं, लेकिन बैकबोन अगर कमजोर हो तो बैठ ही पाएगा व्यक्ति। तो गुरु निष्ठा जो है ये बैकबोन है भक्ति की। इस तरह से रामाचार्य जी की संप्रदाय में एक बहुत ही महान वैष्णव, उनका नाम था दाशरथी। दाशरथी एक समय ऑल्टर में रामाचार्य जी की पादुका को रखे हुए थे, और पादुका को रख करके वहां उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो रामाचार्य जी आए, कहते ये तुम क्या कर रहे हो? क्या गुरुदेव मैं पूजा अर्चना कर रहा हूं। कहते अरे तुम भगवान की पूजा अर्चना करो ना, ये मेरे पादुका की तुम पूजा क्यों कर रहे हो? तो दाशरथ ने कहा वो आपके प्रभु हैं, आप उनकी पूजा करिए, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनकी पूजा करूंगा। तो वास्तव में ये उनकी गुरु भक्ति है, ये उनकी गुरु भक्ति है, हैविंग इमेंस फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर। और जिस भक्त का वास्तव में गुरु में प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, ऐसा भक्त जो है उसके हृदय में शास्त्रों के मर्म अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा शास्त्रों में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, तो किसी भक्त ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रभुपाद जी का ना। तो किसी भक्त ने बोला त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सश्न। प्रभुपाद जी का ना। किसी भक्त ने बोला हरे नाम हरे नाम एक बार। प्रभुपाद जी का ना। कहता फिर कौन सा श्लोक है, ये तो है मोटा मोटा, ये तो है। प्रभुपाद ने कहा ना। श्वेताश्वतर उपनिषद का जो श्लोक है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, कि जिस व्यक्ति का अपने गुरुदेव में और कृष्ण में इम्प्लिसिट फेथ होता है, तो सारे शास्त्रों का मर्म ऐसे भक्त हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, हैविंग इम्प्लिसिट फेथ इन द गुरु। प्रभुपाद जी एक गुरु भाई भी होते, कृष्णदास बाबा जी महाराज। एक समय बोन महाराज उनके पास मिलने के लिए गए थे, तो कृष्ण बाबा जी महाराज ने बोला बोन महाराज को कि गुरुदेव ने देखो आपको भी पाश्चात्य जगत में भेजा, और भक्तिवेदांत स्वामी महाराज उनको भी भेजा, आपको भी अंग्रेजी आती है, इनको भी अंग्रेजी आती है, उनको भी शास्त्र बड़े अच्छे आते हैं, आपको भी शास्त्र बड़े अच्छे आते हैं, प्रचार करने के लिए वो भी गए, आप भी गए, लेकिन वो सफल हुए लेकिन आप विफल हुए, बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो बोन महाराज जो है सोच रहे थे, कहते पता नहीं ऐसा क्या कारण था। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज जो कि हर रोज 126 माला करते थे, 128 माला करते थे. उन्होंने कहा कि क्योंकि भक्तिवेदान स्वामी महाराज यानी श्रील प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद, उनका हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी में बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा थी और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र में प्रगाढ़ श्रद्धा थी, इसलिए वो सफल हुए. लेकिन आप विफल हुए क्योंकि आपकी इतनी श्रद्धा नहीं थी. तो वास्तव में सारी सफलता कैसे प्राप्त होती है? जब हमारी हरि गुरु और वैष्णव में प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, क्योंकि यही कृपा को देने वाले हैं. ऐसा व्यक्ति वास्तव में सब कार्य में सफल होगा, और भले ही बाहर वो झंडे गाड़ पाए या ना गाड़ पाए, लेकिन एक चीज तो है, उसको कृष्ण प्रेम तो अवश्य प्राप्त होगा. सो दैट मींस यहां बताया जा रहा है कि जो गुरु हैं उनको भगवान हरि का प्रतिनिधि मानते हुए और साक्षात हरि के समान पूजनीय मानते हुए, वंदनीय मानते हुए जब कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो है निर्भय हो जाता है, फियरलेस हो जाता है. क्योंकि सबको पालने वाले कौन? कृष्ण. कृष्ण सबको पालने वाले. और जो इस बात का प्रचार प्रसार करता है, यहां बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में गुरु बन सकता है. ओके, आई स्टॉप हियर. हरे कृष्ण. किसा को प्रश्न है? मे बी राधेश्याम प्रभु जी वॉन्ट टू कॉमेंट समथिंग? प्रभु जी, ओके प्रभु जी, किसा को प्रश्न है? किसा को प्रश्न नहीं है? ये तो दो परिस्थिति में होता है, एक हमें सब समझ में आ गया, दूसरा ये हमारे साथ क्या हुआ. हाँ यस प्रभु. हाँ जी यस.
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक्स फॉर वंडरफुल लेक्चर. आपने गुरु पे श्रद्धा से भक्ति का जन्म होता है, बट आपने जिस लेवल की श्रद्धा बताई वो अचानक से तो आ नहीं जाती.
यस.
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हमारे जो समीप है उनके अंडर कार्यरत रहकर हम सेवाएं करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा का लेवल आपने बताया वो शायद कितना जल्दी अच्छी हो सकता है या इस लाइफ टाइम में हो सकता है या नहीं. जो गुरु के पास में रहते हैं शायद उनकी श्रद्धा उतना जल्दी डेवलप होती है, जो दूर रहते हैं उनकी नहीं हो सकती. तो ये कैसे हम अचीव करेंगे?
ओके. तो गुरु के प्रति बढ़ा श्रद्धा कैसे आए? गुरु के बारे में सुन करके और गुरु से सुन करके, ये दोनों तरह से श्रद्धा हमारी बढ़ती है गुरु में. वास्तव में जैसे प्रभुपाद जी, हमारी इतनी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी से भी हमने बहुत कुछ सुना या पढ़ते हैं उनकी बुक्स को, साथ ही प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं. एक्चुअली वैसे किसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है जिनके बारे में सबसे ज्यादा बायोग्राफिकल बुक्स लिखी गई हैं. इतनी बुक्स किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखी गई. तो दैट मीन्स प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ करके और प्रभुपाद जी से पढ़ करके हमारी श्रद्धा बढ़ती है प्रभुपाद जी में. उस प्रकार से हमारे जो गुरुदेव हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, अगर उनमें श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? उनसे सुनकर और उनके बारे में सुन करके. और यहां तो बात है कि जो लोग पास रहते हैं उनकी श्रद्धा ज्यादा रहती है, जो दूर दूर रहते हैं उनकी श्रद्धा कमजोर होती है. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बहुत बार नहीं मिले, फ्यू टाइम्स, में भी 8-10 बार मिले होंगे मैक्सिमम, बहुत इतनी बार नहीं मिले. लेकिन जब भी मिले बड़ी मीनिंगफुल मीटिंग थी वो. लाइक भक्ति विकास महाराज की दीक्षा हुई, वो उनका भी प्रभुपाद जी से मिले नहीं, उनकी दीक्षा फोन पे हुई उनकी. नहीं, भक्ति विकास महाराज ही इज वेरी स्टॉलवर्ट वैष्णव. कितने भक्तों प्रभुपाद जी ने फोन पे दीक्षा दी, लेटर देके दीक्षा दी, पसली नहीं मिले. जैसे आइंद्र प्रभु थे, आइंद्र प्रभु से कि इतनी इंटरेक्शन हुई प्रभुपाद जी से, एक समय वो कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको देखा, बोला जय, दैट्स इट, और इंटरेक्शन हुई नहीं उनकी. तो दैट इज हम देखते हैं कहीं ऐसे भक्त है जिनकी गुरु से बहुत इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन गुरु के बारे में सुना और गुरु से सुना, उससे श्रद्धा बढ़ती है. सो दैट इज इस तरह से श्रद्धा बढ़ी. अगर वैसे तो वाणी सेवा जो है वो तो नंबर वन है, लेकिन कभी अगर वपु सेवा का मौका भी मिले उससे भी श्रद्धा बढ़ती है. हमारे लिए गुरु को भी आए उनके लिए, जैसे माता जी उनको कुकिंग करने का मौका मिल गया, या कोई भक्त है उनको उनके पांव दबाने का मौका मिल गया, तो वपु सेवा से भी श्रद्धा बढ़ती है. ठीक है जी. तो इस प्रकार से श्रद्धा हम बढ़ा सकते हैं गुरु के अंदर. या और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ यस प्रभु. हरे कृष्ण. यस प्रभु.
मैं ये पूछना चाह रहा था कि मीन्स आपने जैसे बताया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो सॉरी माफी चाहूंगा कि मैं मेरे पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुरु को ही भगवान के समान मान के उनकी पूजा करते हैं, कृष्णा को भूल जाते हैं. जैसे कुछ मंदिर से है ऐसे. और ऐसा होता है कि गुरु के, जैसे बताया कि मैं प्रभुपाद जी के शिष्यों का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि उनके जैसे इनका या स्टूल का जो आपने बताया, तो उस वे से शिक्षा उनका आचरण करना चाहिए, उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए, या फिर उनके शब्द का ही ज्यादा महत्व देना चाहिए? इसके बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए थोड़ा.
वेरी गुड. वैसे तो कुछ लोग ऐसे गुरु को ही मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते. ऐसे कहीं ऐसे 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 रिलीजन भी हैं जो कि गुरु 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 करते हैं. ठीक है. और उनके फिर 10 जो उनके गुरु हुए बस उन्हीं को मानते, लेकिन लेकिन गुरु ने जिनका भजन किया उनके बारे में तो पता नहीं कुछ, राइट? तो कुछ और कुछ ऐसे भी जो गुरु को नहीं मानते सिर्फ कृष्ण को मानते, कहते हैं हमें बिचौलिए नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन, हम कांजी भाई के भक्त हैं, हम नहीं मानते किसी को। ओके ठीक है, ओके। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताया करते थे जो गोलोक वृंदावन की और जो रेलगाड़ी है ये दो पटरी पर चलती है, तो उसमें गुरु की कृपा भी चाहिए और कृष्ण की कृपा भी चाहिए, तो दोनों के ऊपर जो है ये गाड़ी चलती है, दोनों पैरेलल रेलवे ट्रैक्स है, तो एक को एक पे नहीं चलना, दोनों पे चलना है वास्तव में, तो दोनों हमें चाहिए होते हैं वास्तव में। और दूसरा आपका सवाल क्या था, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज, हाँ या तो हम इनको जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिए भक्तों ने स्टूल में नहा लिए, तो क्या हम इसका अनुकरण करें? अनुकरण करने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इंस्पिरेशन लेने के लिए कि इनकी कितनी श्रद्धा है प्रभुपाद जी के अंदर, तो इस तरह से हमारी भी अपने गुरुदेव में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भले हम इसका अनुकरण ना करें, हम भी वेट करें, नहीं हम भी स्नान करेंगे जब गुरुदेव कभी जाएंगे पेट खाली करने के लिए, तो वही इकलौता तरीका है गुरु श्रद्धा को व्यक्त करने का, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि ना गुरु की खुशी के लिए हम कितनी अपनी कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक भक्त थे गौड़े मठ में, गुरुदेव एक बहुत अच्छे वैष्णव थे, तो एक अपने गए गुरु के पास, कहते गुरुदेव मैं 30 साल से जप कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा। तो गुरु ने कहा तुम चाहते हो कुछ हो? कहते हाँ चाहता हूं मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मठ छोड़ दो, दिल्ली में जाके मंदिर खोलो। अब दिल्ली में जब आए यहां पर अब इतनी हेल्पलेस कंडीशन है, जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर मंदिर बनाया। और ये करते करते जब असहाय अवस्था में जब करते थे तो उनकी तो उनका भजन जो है गहरा हुआ। और जब ये मंदिर बन गया तो उनके गुरु ने आके कहा कि अब ये जो मंदिर है इसको इस्कॉन को दे दो। ठीक है गुरुदेव, उसके बाद उन्होंने वो मंदिर जो है इस्कॉन को दे दिया जो उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत से बनाया था। और इस्कॉन तुम्हारा छत्रपुर करके जगह है, वहां पर पूरा फार्म है वो, तो वहां जगन्नाथ जी का मंदिर भी है, उन्होंने बनाया था लेकिन वो इस्कॉन को दे दिया। उनके गुरु ने बोला इस्कॉन को दे दो, दे विल मैनेज, और अब तुम वृंदावन जाके भजन करो। वृंदावन में अब जो भजन कर रहे हैं, नाउ ही इज गेटिंग टेस्ट ऑफ द होली नेम। गुरु के लिए उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ी। सो कंफर्ट जोन में कृपा नहीं होती, कंफर्ट जोन के बाहर कृपा होती है। जैसे सुबह सुबह जब हम कंबल उठाते हैं ये कंफर्ट जोन छोड़ते, तभी तो मंगल आरती आवाते हैं। जो कह नहीं कंबल, जो कंबल नहीं छोड़ेगा मंगल आरती कैसे आएगा, राइट? जैसे एक समय एक भक्त था, प्रभुपाद जी ने बोला तुम मंगल आरती क्यों नहीं आते? एक्चुअली प्रभुपाद, एक्चुअली आई एम इन माया। तो प्रभुपाद ने कहा देन ब्रिंग माया विद यू बट यू मस्ट कम फॉर मंगल आरती। पॉइंट इज दैट कि हमें अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए गुरु की खुशी के लिए, तो हमें कृपा प्राप्त होगी। जैसे कहा था डर के आगे जीत है, उस तरह से कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है। और कोई सवाल एनी माता जी? ओके माता जी, कोई प्रश्न नहीं है? और माता जी सेल्फ रियलाइज्ड, वंडरफुल, ओके। यस प्रभु,
शक्ति और लादिनी शक्ति अपने हृदय से स्वरूप शक्ति के रूप में उनको
हाँ जी यस
ट्रांसफर करते हैं, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कुछ।
अच्छा देखिए, वैसे हम श्रीमती राधा रानी से तो डायरेक्ट मिलेंगे नहीं, ना बलराम जी से, लेकिन बलराम जी में चित्त शक्ति है और इनमें अलादिनी शक्ति है। तो राधा रानी और बलराम जी के कंबाइंड प्रतिनिधि हैं गुरु। उनके प्रतिनिधि होने का मतलब क्या है कि जो उनकी शक्ति है उसके कैरियर हैं ये। तो बेसिकली ये दोनों शक्तियां जो है गुरुदेव के हृदय में है, गुरुदेव खुद जो है ही इज अ लिबरेटेड सोल, तो इसीलिए वो वास्तव में इन शक्ति को कैरी करते हैं और उनकी कृपा जहां बहेगी वहां वहां पर ये स्वरूप शक्ति की कृपा भी बहेगी। इससे कई भक्तों का यह अनुभव होता है कि जब गुरु स्वीकार करते हैं, सो दे एक्सपीरियंस बोथ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ऑल्सो डिवाइन ब्लिस। अब भक्त लोग हैं, ये मूवी देखने नहीं जाते, ना बाहर खाते पीते, ना बाहर भेलपूड़ी खाते, ना कुछ प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन फिर आप लोग के लाइफ से बड़ी रूखी सूखी होगी फिर। ना 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 ना, भक्ति जीवन में अलादिनी शक्ति है ना, ऊंचा रस, तो सस्ते टुच्ची चीजें जो है इसलिए निकल जाती है बिकॉज अलादिनी शक्ति की मर्सी, उनकी कृपा है, दैट इज। सो गुरु इज अ कैरियर ऑफ बोथ अलादिनी शक्ति एज वेल एज चित्त शक्ति कंबाइंड टुगेदर एज स्वरूप शक्ति। ठीक है जी, हाँ यस प्रभु।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, थैंक यू फॉर गुड क्लास। आई मीन वी नो दैट गुरु इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कृष्णा, सो वी रिस्पेक्ट एज गुड एज कृष्णा, यू टोल्ड दिस। And so now there are many representatives below him. We serve under them, to Guru. So, I mean, I need some elaboration on to know how we should respect the devotees below. As we respect like Guru or accordingly. I just want to know about that.
Again, all because sare gurus hote hain majhe, like there are mentors also, there are counselors also, there are guides, there are philosophers. बेसिकली जो जो जितने भी शिक्षा गुरुज होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, इन सबका काम होता है भक्त की हेल्प करना कि वो अपने दीक्षा गुरु की अच्छे सेवा कर सके. यानी कि अगर ऐसा कोई शिक्षा गुरु है जो कि मेरे को हेल्प नहीं कर रहा मेरे दीक्षा गुरु की अच्छे से सेवा करने में, दैट मीन्स दिस पर्सन कैन बी अ वैष्णव इन माई लाइफ फॉर इंस्पिरेशन बट नॉट रियली माई शिक्षा गुरु. शिक्षा गुरु का काम क्या होता है? शिक्षा गुरु इज ऑल्सो दे आर वेरी वेरी एग्जॉल्टेड, लेकिन उनका कार्य क्या है? भक्ति हेल्प करना कि वो अपने दीक्षा गुरु की और अच्छे सेवा कर सके. इसलिए अक्सर मंदिर के जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं. वो देखते हैं कि जिसके जो भी दीक्षा गुरु हैं वो अपने अपने दीक्षा गुरु की और अच्छे सेवा कर सके विदाउट बीइंग गुरु फनेटिक, रादर बीइंग मैच्योर्ड, उसकी हेल्प करते हैं. तो ऐसा व्यक्ति जो है हमें हेल्प करता है, सो दैट इज वी कंसिडर देम ऑल्सो एज डिवाइन, क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे दीक्षा गुरु की सेवा करने में, यहाँ हमारे प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य उनकी सेवा करने में. इसलिए ये भी वंदनीय है, पूजनीय है. भले हम इनकी व्यास पूजा नहीं करते, व्यास पूजा हम सिर्फ दीक्षा गुरु की करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी वैसे ही पूजनीय माने जाने चाहिए. तो इसीलिए एक भक्त के ऊपर कई सारे गुरुओं की छतरी होनी चाहिए, उसमें शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, फाउंडर आचार्य भी हैं, पूर्ववर्ती आचार्य भी हैं. तो इस तरह से गुरुजनों की छतरी जब हमारे ऊपर होती है, देन वी आर सेफ. तो इस भाव के साथ हम जिएंगे तो देन वी विल फील वेरी सिक्योर कि मेरे ऊपर इतने सारे मेरे गुरुजन मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे को कृपा देने के लिए, वाओ अमेजिंग. तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए. सो वी शुड बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द मेंटर्स आल्सो. यानी कि उनको सस्ता लेंगे, दीक्षा गुरु इज द ओनली वन, बाकी सब तो छिछोरे लोग हैं ना. सो फिर ऑफेंसेज हो जाएंगे हमसे, फिर दिक्कत हो जाएगी हमसे, ऑफेंसेज हो जाएंगे. सो दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग अस, सो वी शुड ऑल्सो कंसिडर दम एज वॉशेबल, उनको पूजनीय मानना चाहिए. ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? लास्ट क्वेश्चन. ओके, हाँ यस प्रभु जी.
अभी आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ इतना निकटता से सेवा कर रहे हैं, महाराज इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं, तो बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे लेसन महाराज के इंटरेक्शन से सीखे होंगे, तो इफ यू कैन शेयर सम देन इट विल बी वेरी गुड.
वैसे मैं महाराज के बहुत करीब मैं सेवा नहीं करता हालांकि मैं लेकिन हाँ, महाराज जी कुछ हैं, ही हैज सम वंडरफुल पास्ट टाइम्स महाराज के. ऑफकोर्स मैं महाराज से डांट खाता हूँ यूजली, बिकॉज मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ लेकिन मैं जो द्वारका जाने वाला था तो मैंने महाराज से बोला, मैंने कहा महाराज आप मुझे द्वारका भेज रहे हैं लेकिन मैं मैनेजमेंट में बहुत बेकार हूँ मैं. एंड ही आज ऑल्सो मोहन रूपा प्रभु जी द टेम्पल प्रेजिडेंट इसकॉन ईस्ट कैलाश की हाउ इज अमोघ लीला. तो प्रभु जी ने कहा महाराज यू नो आई एम बैड इन मैनेजमेंट, ही इज वर्स्ट. महाराज ने कहा हो इज ही दैट बैड? यस महाराज जानता हूँ, मेरा माल है, मैं जानता हूँ, बहुत गया गुजरात में वो. फिर महाराज ने मेरे को बुलाया, मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज मेरे को मैनेजमेंट वगैरह आता नहीं है तो मेरी कंप्लेंट्स आपको आया करेंगे, महाराज अमोघ लीला पू ने ये स्यापा कर दिया, ये कांड कर दिया, तो मेरे को मेरी कंप्लेंट्स आपको आया करेंगे. आई एम जस्ट मेंटली प्रिपेयरिंग यू. सो फिर देन महाराज ने जो है ऐसे सर पे मेरे किया कि नहीं नहीं कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस. और फिर उनके आशीर्वाद से अब द्वारका चल भी रहा है. अब जो भक्त लोग दुखी हो रहे हैं देखो वो अब क्या करते हैं, उनके कर्म है कि मेरे जैसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में आ गया है. ठीक है, लेकिन वैसे द्वारका मंदिर इज गोइंग ऑन नाइसली एंड देर आर सेल्फ मोटिवेटेड डिवोटीज, सेल्फलेस डिवोटीज, देर इज नो वन हु इज पॉलिटिकल, देर इज नो वन हु इज इनसिक्योर, कोई ग्रुपबाजी नहीं है, सब परिवार की तरह रहते हैं. सो दैट इज गोइंग नाइसली बाय मर्सी ऑफ श्री प्रभुपाद एंड महाराज, सो थिंग्स आर गोइंग वेल लाइक दैट. ऐसा एक समय ऐसा हुआ था कि वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का भी चली रही थी, मैंने महाराज को बोला, महाराज के लिए थोड़ा सा होशियार बनना था ताकि महाराज को लगे मेरा डिसाइपल कितना इंटेलिजेंट है. तो जो मूर्ख डिसाइपल होते हैं वो गुरु के आगे नंबर बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो मैं भी ऐसा नंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, मूर्ख डिसाइपल हूँ मैं भी. तो मैंने बोला आर्किटेक्ट को, मैंने कहा ये तो ये कंस्ट्रक्शन होगी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन चलेगी तो इसमें क्रेन और ये उसकी आवाज़ होगी ना मशीनों की, तो ये मंदिर के अंदर एंटर करेगी क्या? मुझको लगा महाराज बोलेंगे वो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. महाराज ने कहा अमोघ लीला तुम पागल हो गए हो, ये जो क्रेन की आवाज और ड्रिलिंग की आवाज है इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कीर्तन. टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बाद जो ड्रिलिंग की आवाज होती है, क्रेन की आवाज होती है, ये कीर्तन से अभिन्न होती है। कहो जी महाराज। और फिर महाराज बोलते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। जब जूहू का मंदिर बन रहा था, मायापुर का मंदिर बन रहा था, तो प्रभुपाद जी ने बोला है टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बाद जो आवाजें होती हैं क्रेन की, ड्रिलिंग की, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कीर्तन। जी महाराज। तो महाराज ने ये बोल के बताया तो मूर्ख नंबर वन हुआ असल में, और कुछ नहीं। इस प्रकार से महाराज हैज बीन वेरी लविंग अफेक्शनेट लाइक दैट। तो चल रही ठाकुर जी की दया से फिर वैष्णव के आशीर्वाद है, महाराज मर्सीफुल लाइक दैट। ठीक है रोजी, या ओके वो लास्ट क्वेश्चन या एंड आई फिनिश बिकॉज़ नाउ ऑलरेडी बच चुके हैं। यस तो बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंटली इन ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल मास्टर। कभी कभी ग्रेटिट्यूड होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो क्या करें? गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड बड़ा कैसे लेकर के आए? शुरू शुरू में हमारा ग्रेटिट्यूड जो है आते जाता ही रहता है, क्योंकि अनिष्ठा भक्ति का एक लक्षण है घन तरला, यानी कभी घना कभी तरला, समटाइम्स कंडेंस्ड समटाइम्स डाइल्यूटेड। तो ये जो है अनिश्चितता भक्ति का एक लक्षण है ये, चाहे वो कृष्ण में श्रद्धा हो, चाहे हरिनाम में श्रद्धा हो, चाहे बुक रीडिंग में श्रद्धा हो, या गुरुदेव में श्रद्धा हो, इन सब में हम घन तरला नाम का फिनोमेना इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कभी भक्ति बहुत घनी होती है कि बस अपना अपना जीवन दे ही देंगे हम गुरु और कृष्ण की सेवा में, और कभी होता है हाँ देंगे कल देंगे, तो डाइल्यूट भी हो जाता है। तो इसीलिए घन तरला जो है ये एक एस्पेक्ट है अनिष्ठा भक्ति का, यानी कि अभी निष्ठा पे, जब भक्ति पे नहीं आया अभी, निष्ठा पे नहीं आया अभी, तो इस तरह का फिनोमेना रहता है। लेकिन भक्ति जो हम करते रहते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, खुद को रिमाइंड करते रहते हैं, साधु संघ में आते रहते हैं, तो होता क्या, घन तरला में घन की परसेंटेज बढ़ती रहती है और तरल की परसेंटेज कम होती जाती है। एंड व्हेन वी कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्ठा, तो फिर उसके बाद फिर व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। निष्ठा से पहले इज साइन थीटा, अब देखा साइन थीटा है ना, सो घना तरला, घना तरला। लेकिन जब कोई निष्ठा पे पहुंच जाता है देन इट बिकम्स टैन थीटा। थोड़ा मैथमेटिकल एग्जांपल दिया, आई एम सॉरी। सो साइन थीटा मतलब उसमें सिन है ना, अभी इसलिए इसीलिए तो इसे सिन थीटा, सॉरी साइन थीटा, सबका वैसे रहता है घना तरला घना तरला। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, तरला कम होता जाएगा, घना बढ़ता जाएगा, एंड वन डे इट बिकम्स टैन थीटा एंड देन लाइफ बिकम टैन टैन। ठीक है जी, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बस। लेकिन हमें यह साधु संघ में आकर के भजन क्रिया में लगे रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी प्रभु जी, एनी कॉमेंट्स प्रभु जी? ओके ओके, और कोई सवाल किसी का? ओके, किसे को सवाल है? एक, किसे को सवाल है? दो, ढाई, पौने तीन, तीन। ओके, हाउ आई स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स? मैं बहुत तो एक्सपर्ट नहीं हूं इन रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, बट यस आई रीड दम लिटिल लाउडली। मैं एकदम मन में नहीं पढ़ता, आई रीड दम लिटिल लाउडली। और वैसे अगर कभी मेरा मन अगर बहुत चंचल हो रखा होता है अगर, सो देन आई study even more loudly and sometimes to the extent as if I am teaching someone, bhale mere samne koi nahi baitha ho, like that. To वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, साथ ही मैं personally, बाकी हमारे मंदिर में जो भक्त हैं तो मंदिर में पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाई करने के लिए अक्सर मंदिर से भाग जाता हूँ, क्योंकि मंदिर में because I am like an octopus, octopus मतलब eight legs in eight departments, तो कोई ना कोई जो है टांग वाला आया होता है मेरी टांग खींचने के लिए। तो इसलिए no doubt वैष्णव की सेवा करना जरूरी है, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी भी जरूरी है। So in between I do reading marathons also. In a month I have two or three reading marathons. मतलब entire day I just study. तो थोड़े गोविंदा से सैंडविच वगैरह लिए, वो बैग में डाले, और थोड़ा जूस वगैरह लिया, लस्सी वगैरह ले करके, and I get the books and I go to some Buddhist temples. बुद्धिस्ट टेम्पल में कुछ नहीं होता, देखो जो बुद्धिस्ट मंक है वो तो सो रहे हैं अपने कमरों के अंदर, ठीक है, बुद्धिस्ट मंक्स यार वो तो अपना आराम कर रहे होते हैं। जब वो आ जाते हैं तो मैं कपड़े तो उनके जो टेम्पल में थोड़ा झाड़ू पोछा लगाता हूँ, कहते हैं ये फोकड़ का जमादार आया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। सो दैट इज वहाँ बैठ के, वहाँ लाइट भी है, पंखा भी है, सामने महात्मा बुद्ध बैठे होते हैं, अपने यहाँ बैठ के भागवत पढ़ो, मस्त बहुत बढ़िया। तो बीच में थोड़ी अगर भूख लगी दोपहर में, सो देन आई गो एंड हैव माई थोड़ा सैंडविच वगैरह जो लिए होते हैं मैंने, समोसा वगैरह वो लिया, थोड़ा सा जूस वगैरह लिया, फिर वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ के नीचे थोड़ा आधा घंटा रेस्ट भी कर लिया, थोड़ी पावर नैप ली, अगेन आई गेट बैक टू स्टडी। तो इस तरह से फिर मैं रात को 8 बजे वापस आता हूँ। भक्तों को लगता है प्रभु जी आज प्रीचिंग में गए हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कभी कभी खुद को प्रीचिंग करना भी जरूरी होता है। सो दैट इज आई स्टडी समटाइम्स, आई टेक अ ब्रेक, आई गो, और कभी कभी तो ऑफकोर्स वीकडे में भी ऐसे दिन होते हैं जब इतना बहुत बिजी शेड्यूल नहीं होता, देन आई स्टडी इवन इन द टेम्पल एज वेल, बट समटाइम्स आई गो फॉर मैराथॉन्स। मेरी पढ़ाई बहुत पेंडिंग हुई होती है कि भाई अब जन्माष्टमी के 15 दिन बीत गए, अब कुछ किताब छुई नहीं हमने 15 दिन, कहते बस अब टारगेट मीट करने के लिए बेटा भाग ले अब। सो देन आई गो, सेकेंड प्लेस विच वेयर आई स्टडी इज आर दी मेट्रोज। मेट्रो के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, सबके साथ अपना फोन के ऊपर मूवी देख रहे हैं अपना यूट्यूब पे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सो आई ट्रैवल इन मेट्रो ऑल्सो, मेट्रो में मैं पढ़ाई वगैरह करता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो वन मोर प्लेस वेयर आई स्टडी। और बाकी आई मेक आई अंडरलाइन ऑल्सो, कहीं डिवोटी से रहता है कि ना किताब में अंडरलाइन करें ना करें किताब बंदी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी भी क्या करते थे, प्रभुपाद जी के पास रेड कलर का पेन था और प्रभुपाद जी उसे अंडरलाइन क्या करते थे। सो इसीलिए बुक में कोई स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए कि तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आई कैरी मार्कर ऑल्सो, और जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो व्हेन आई स्टडी करता हूँ तो मैं उसमें रिविजन भी रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टडी पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन आई रिवाइज देयर एंड देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then zap through 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, and then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and then there and then revise 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, and then zap through 11, 12, 13, 20. इस तरह से आई टेक 10, 10 के chunks and then revise there and then. Revise करना क्यों जरूरी है, जैसे कील को अगर आप सिर्फ एक बार हथौड़ी मारो ठक और छोड़ दो, क्या होगा, कील गिर जाएगी। तो कील को अंदर घुसाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठक ठक ठक, तो फिर वो अंदर जाती है, और जितना सॉलिड माल होगा ये उतना ज्यादा ठोकना पड़ेगा। तो इसीलिए पढ़ाई करते वक्त वी हैव टू रिवाइज, हम कई बार भूल जाते हैं पढ़ते हुए हैं क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते। रिविजन इज वेरी वेरी पावरफुल। और एक और चीज मैं करता हूं पढ़ते वक्त, वट एवर आई स्टडी आई हैव अ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, क्योंकि हमें टेक्स्ट जो है याद नहीं रहता, टेक्स्ट इज नॉट, मतलब माइंड को पसंद नहीं है टेक्स्ट, लेकिन माइंड को क्या पसंद है, इमेजेस पसंद है उसको। सो आई वट एवर आई स्टडी आई ग्राफिकली ट्राई टू रिमेंबर इट, क्योंकि ग्राफिक्स हमको याद रहते हैं। जैसे मूवीज के कई सीन्स हैं आज भी याद हैं, जो कि 25 साल पहले मूवी देखी थी आज भी वो सीन याद है कि गब्बर सिंह ऑन चट्टान याद है, क्यों याद है, क्योंकि ग्राफिक्स मन को बहुत पसंद है। तो पढ़ते वक्त देन आई डू सम ग्राफिकल वे ऑफ स्टडी ऑल्सो, मेकिंग सम काइंड ऑफ मैप्स और डूइंग सम एनिमेशंस, तो इस तरह से वो चीज़ फिर याद भी रहती है। सो दिस इज हाउ प्रभु जी आई स्टडी। इनफैक्ट वी शुड लर्न फ्रॉम राधेश्याम प्रभु जी, प्रभु जी जो क्वालिटी प्रभु जी की है वो तो कभी हम मैच ही नहीं कर सकते। सो दैट प्रभु जी माई हियरिंग इज लिटिल पैशनेट प्रभु जी, मेरा माई हियरिंग इज, मैं क्या करता हूँ मैं VLC प्लेयर में सुनता हूँ और मैं डबल स्पीड करके सुनता हूँ उसमें, तो 2 घंटे का लेक्चर होता है वो 1 घंटे में फिर वो हो जाता है। Because some of the speakers are very sattvic, but I am not so sattvic. So उसमें double speed कर देता हूँ उसकी मैं, और फिर then I, और फिर मैं I make notes on laptop. टक उसमें जो key words होते हैं वो type करके I make notes. So मैं ये recommend नहीं कर रहा, आप लोग भी ऐसा करो, हमें सात्विक में सुनना चाहिए, जिस लय में बता रहे हैं आपको गुरुजन वैष्णवजन उसी में सुनना चाहिए। But I am राजसिक और मेरा time थोड़ा कम होता है, और मैं देखा अब ये क्लास तो यार 1.5 घंटे की है, इसको 45 मिनट्स में करना है अब, तो डबल स्पीड कर देते जी 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 करके मेरी वो लेक्चर हो जाता है उस तरह से। सो बट आई डोंट रिकमेंड दिस बिकॉज आई एम राजसिक, दैट्स आई डू ऑल दिस काइंड ऑफ राजसिक वेज ऑफ हियरिंग, बट यस दिस हाउ आई हियर रोजी। सो यूजली आई हियर ऑन सी इवन ऑन मोबाइल फोन आई गॉट अ ऐप जो कि डबल स्पीड कर देता है उसकी। सो बट यूजली ऑन लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप पर मैं पहले ही नोट्स ही बना लेता हूँ, दैट वेज आई डू हियरिंग मोस्टली ऑन लैपटॉप। वाइल ट्रैवलिंग आई प्रेफर रीडिंग, बट व्हेन आई एम ऑन लैपटॉप देन आई प्रेफर हियरिंग। So like that Rosie. Okay, how do I improve? ऐसे तो मेरी बहुत ही खराब क्वालिटी प्रभु जी हालांकि, बट येस बाई द मर्सी ऑफ ग्रेट वैष्णवास लाइक ससुरु महाराज इन हिज जपा रिफॉर्म बुक and Sachinandan Maharaj in the form of his books like Nectar and Ocean of the Holy Name, and Art of Chanting Hare Krishna by Mahanadi Swami Maharaj. So by reading all these books, it improved certainly. So main kaise karta hu chanting Prabhu ji, ek to main pura prayas karta hu ki mere raat ka rest acha ho jaye. Agar raat ka rest acha nahi hota to fir wo japa kharab hota hai. Or when I'm feeling too sleepy, then I sit in Padmasan. Padmasan mein neend nahi aati. Agar koi is tarah se agar baithta hai Padmasan mein, Padmasan mein neend nahi aati because isme reed ki haddi seedhi ho jati hai. So that helps. Aur saath hi main pani peeta rehta hu beech beech mein. That is also a way I do. Aur main ek bhikshuk ki bhavana se chanting karta hu. Because somebody was telling me that art of sadhana is nothing but art of begging. Main kaha acha to yani bheek mangni basically mere ko. So 2.5 hours I remain in a mood of being a bhikshuk. And oh holy name, please bless me. I can do some kind of vibrato, like parrot's vibrato. I can just move my mouth muscles. But actually chanting the holy name is by your mercy. So wo jo hai kripa ki bhiksha mangte hue I chant. And I chant little loudly. Main bahut aram se chanting karta hu, then I feel sleepy. So I chant little loudly. To isme bhakto thoda sa dur hoke baithta hu, jisme where I am visible also. So that in case if I am feeling sleepy, somebody can wake me up. Main thoda sa isme dur hoke baithta hu bhakto se. I can chant little loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I don't disturb other devotees. So isme thoda sa distance hoke main baithta hu. Ekdam group mein main chanting nahi kar pata. Group mein main so jata hu main. So main thoda sa alag hoke chanting karta hu. And after every round I beg to Panchatattva very desperately, and I recite also Trinadapi Sunichena Tarurapi Sachna Amanina Mandina Kirtina Sadhari. So I say this, and again with this mood again I begin to chant. So is tarah se baki, if I am feeling very very sleepy, then I do Mayurasan. Main thoda sa dur ja karke chup karke kahin deewar ke piche Mayurasan karke aa jata hu. Mayurasan se kya hai, blood flow acha ho jata hai again, to 4-5 mala achhi chal jati hai. फिर 4-5 माला के बाद फिर से जब ब्लड फ्लो कम होना शुरू होता है, देन अगेन आई गो एंड डू मयूरासन एंड देन कम बैक. मयूरासन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मयूरासन करते करते कई लोग अपनी नाक तोड़ लेते हैं. बट बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियस, बिकॉज आई वाज डूइंग हठ योगा, तो इसलिए ये उपटांग आसन बंदरों वाले मैं क्या करता था पहले, तो इसलिए उसके कुछ अवशेष, सम रेसिड्यू ऑफ दैट ऑफ अष्टांग योगा इज स्टिल देयर इन मी. तो इसलिए वो मैं अभी कभी कभी उसको चैंटिंग में इस्तेमाल करता हूँ व्हेन आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. सो लाइक दैट प्रभु जी, आई डू इट्स इट हेल्प्स. ऑलराइट, यहीं पे विराम दें, किसी को प्रश्न तो नहीं है? और ओके ब्रो, लास्ट क्वेश्चन क्विकली बिकॉज इट इज ऑलरेडी 9:15. हाँ ओके, भगवत गीता लेनी चाहिए, अब है उसके पास आधा मिनट ही उसके पास, कैसे कैसे करें? द वे आई अप्रोच वाइल्ड डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई क्विकली आस्क अ क्वेश्चन. मैं तो वेल, आर यू रिलीजियस और आर यू स्पिरिचुअल? आई जस्ट क्विकली गो एंड एक्सक्यूज मी, आर यू रिलीजियस और आर यू स्पिरिचुअल? वेल आई एम रिलीजियस. तो मैं कहता हूँ वेल, फॉर ऑल रिलीजियस पीपल वी हैव गॉट दिस भगवत गीता. और अगर बोलते हैं वेल आई एम स्पिरिचुअल, तो मैं कहता हूँ वेल, फॉर ऑल स्पिरिचुअल पीपल वी हैव गॉट भगवत गीता. Like that. तो इस तरह से I approach them. Do you think you are intelligent or you are handsome? Well, I think I am intelligent. Well, for all intelligent people, you have got Bhagavad Gita. Somebody say, well, I am handsome. Well, for all handsome people, you have got Bhagavad Gita. So depend करता है माहौल कैसा है. Like मैं एक बार एक बारात में था, घोड़े पे चढ़ा हुआ था, दूल्हा था, तो मैंने उसको कृष्ण बुक दी. मैंने कहा देखो सुखमय जीवन के लिए, उसमें राधा कृष्ण बने हुए थे उसमें. तो उसके गले में माला थी, नोटों की माला होती ना, 100, 200, 200, 500 की. तो उसमें से फिर उसने एक नोट निकाल के दे भी दिया और वहां भूख ले भी लिया उसने. तो इस तरह से केस टू केस रहता है, केस टू केस रहता है. तो डिवोटीज हैं दिरू, इस तरह से व्हेन दे अप्रोच, हमारे एक डिवोटी थे, ही अप्रोच्ड 4 पीपल, पंजाब में थे, और 4 लोगों को जो है उन्होंने गीता पकड़ा दी, ये गीता गीता ये 4 लोग गीता होती थी. तो उन्होंने सब खोल के देखा था, तो एक ही है, तो कहते चारों को एक ही किताब पकड़ा गया. वो कहता ओए इधर, ये क्या है भाई, चारों को एक ही किताब पकड़ा दी तूने, एक ही काफी है. कहते नहीं नहीं सर जी, कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4. कहता है कहां लिखा है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4? तो भक्त बोला कि नहीं इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप जो पढ़ोगे आप में अलग भाव आएंगे, ये जो पढ़ेंगे इनमें अलग भाव आएंगे। तो भक्त लोग इस तरह से ने अप्रोच इस तरह से, लेकिन यह जितना आपका उत्साह होगा उतना सामने वाला भी लेना चाहेगा। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपने नोट किया जब मैंने बोला हरे कृष्णा तो आपने बोला हरे कृष्णा, मैंने जब बोला हरे कृष्णा तो आपने बोला हरे कृष्णा। यानी कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर का जैसा उत्साह होगा वैसा ही उत्साह लेने वाले के अंदर भी होगा। अगर बांटने वाला होगा ना, ले लो ले लो, कौन लेगा भाई, अरे यार आप ले लो गीता, ले लो भाई गीता, ले लो आप, क्यों ले लें, कहते हैं आपका जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सामने वाला बोलेगा तेरे खुद के जीवन में तो आनंद आया नहीं, अपना चेहरा देख, ये पढ़ के मैं भी तेरे जैसा हो जाऊंगा, कब भी नहीं लूंगा भगवदगीता। तो हमें मुस्कुरा के उत्साह के साथ मिलना चाहिए लोगों से। Here is the manual of life for a very special person in the market and you are the one. अरे यार ऐसे कौन मिलता है। तो उत्साह के साथ हमें जाके मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए, ठीक है। और बहुत बढ़िया रहेगा अपने साथ अगर आप कुछ सौंफ के पैकेट रखें प्रसादम, चाहे वो ले चाहे ना ले, लेकिन आपने कहा कोई बात है हमने नहीं ली, नो प्रॉब्लम, हमारा राधा वृंदावन चंद्र टेम्पल है, प्लीज NVCC आप जरूर आइएगा, हियर इज प्रसादम फॉर यू। तो एक अच्छे नोट पे अगर हम छोड़ते हैं किसी को तो भले ही वो हमसे ना ले, लेकिन भविष्य में किसी और से लेगा, कहते वो भक्त मिला था यार, क्या बिंदास आदमी था एकदम वो। तो इसलिए वी शुड कैरी सम प्रसादम ऑल्सो, कि हम जिससे मिले और वो अच्छा कैंडिडेट था तो आप भले ले या ना ले उसको एक अच्छे नोट पे मुस्कुरा के छोड़ना, कहते बाद में नहीं लिया नो प्रॉब्लम। कई कई भक्त लोग ऐसा करते हैं नहीं लेना तेरी ये नहीं करना, ठीक है, वो नहीं भी लेता तो भी एक अच्छे नोट पे उसको छोड़ना चाहिए, बीइंग प्लेजेंट, देखो बात नहीं, हम नहीं लिया कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड, आप कभी हमारे मंदिर आइए, बहुत अच्छा मंदिर है, कम विद फैमिली, हाँ हरे कृष्ण, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। बाकी है मैदान में उतर कर ही क्या चीजें होती हैं, आप मतलब कमरे में बैठे बैठे आप नहीं सीखोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, वहां उतरेंगे थोड़ा एडवेंचर तो वहीं पर है उतर करके, तो इसलिए उतरना चाहिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और बहुत ही एडवेंचरस सेवा है, करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव वन डिवोटी हु इज डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पास्ट 30 इयर्स, और शाम को जब वो आते हैं और थूकते हैं वॉश बेसिन में तो थूक काली होती है, बिकॉज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, लेकिन इतने सीनियर डिवोटी होने के बावजूद भी जो 30 साल से है इस्कॉन में आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, क्यों, ये बुक्स जो है इतनी महान है, तो इसीलिए हमें उत्साहपूर्वक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहिए। इट इज वेरी एडवेंचरस सेवा एंड फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ मर्सी। एक वक्त बोला, कहते हैं नहीं, एक व्यक्ति था बोला प्रभुपाद जी से, कहते हैं स्वामी जी वो कह रहे हैं बुक्स 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 बुक्स, क्या चाहते हैं आप, यू वॉन्ट पीपल टू बिकम बुकवॉर्म्स। प्रभुपाद ने कहा इट इज बेटर इफ दे बिकम बुकवॉर्म्स, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लाइफ दे विल बिकम स्टूलवॉर्म्स। So we should do book distribution. Or Prabhupada ne bola ki those who will do book distribution, Lord Chaitanya will personally catch hold to their shikha and take them back home back to Godhead. Okay, Shri Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Samasta Kati Vaishnava Bhakta Vrinda ki, Nithai Go Premanande, Hari Hari Go Hari.
हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही आभारी है इसके समूह लीला प्रभु के, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो बहुत ही जटिल विषय है उसको भी प्रभु जी एक हास्यास्पद तरीके से प्रभुपाद के एग्जांपल और स्टोरीज से और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से इतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि वो पूरी तरह से मन बुद्धि और हृदय में उसका प्रिंट आ जाता है। सो दैट वी सॉ लास्ट 1.5 आवर। So let us again thank him by loudly chanting Haribol 3 times. और प्रभु जी की जो कथा है वो श्री राधा कुंजवारी मंदिर में चल रही है, तो आज 3रा दिन है, परसों से शुरू हुई, तो आज शाम को 6:30 से 9 बजे तक प्रभु जी वहां पर कथा करेंगे, और कल सुबह का भागवतम क्लास राधा कुंजवारी मंदिर में प्रभु जी देने वाले हैं, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
Hare Krishna. Thank you. You are amazing.
Guru Tattva and...